ઓમ શાંતિ. ત્યારે બાબાને બહુ સુંદર મુરલી કે મહાવાક્ય ઉચ્ચારણ કિયે હમ બચ્ચો કે સામને, ઓર મુરલી ક્યું જરૂરી હૈ રિવિઝન કરના. અંદર હી અંદર નિરંતર હમારા મુરલી કા ચિંતન ચલતા રહે કે આજ હમને ક્યા સુના. તો આત્મા મેં તાકત આતી જાયેગી. જૈસે કે બાબા કઈ બારી ઉદાહરણ દેતે હૈ કે જૈસે ગાય ચારા ખાને કે બાદ મેં ક્યા કરતી હૈ, જુગાલી કરતી હૈ. તો ઉસી પ્રકાર સે બાબા કહેતે મુરલી સુનના ઓર ફિર મુરલી કો ઉગારના, જુગાલી કરના, મનન ચિંતન કરના, અપને અંદર અંદર મુરલી ચલતી રહે. ઇસલિયે કહા જાતા કે અપની ઘોટ તો નશા ચડે. જબ મુરલી હમ અચ્છી તરહ સે ઘોટ કરકે ઓર હમારે ચિંતન મેં લાયેંગે, મન મેં વહી ચિંતન ચલતા રહેગા, તો તાકત મિલેગી આત્મા કો. જૈસે શરીર કો તાકત કબ મિલતી હૈ, જબ ખાના તો ખા લેતે હૈ, લેકિન ખાના ખાને કે બાદ મેં અગર ડાઇજેશન ન હો તો ઇનડાઇજેશન હો જાતા હૈ ના, તો ભોજન હજમ હોગા તો ફિર ખૂન બનેગા, ખૂન બનેગા તો ફિર ઉસે તાકત આયેગી. તો આજ કી મુરલી મેં બાબા ને બહુ હી સુંદર યે અભ્યાસ કરાયા, ઓર આદરણીય ચંદ્રિકાબેનજી ને 2 મિનિટ સાયલેન્સ કા અનુભવ ભી કરને કો કહા. તો બહુ સુંદર ઇસ અનુભવ કો બાર બાર મેં હમ દોહરાતે રહે. તો આજ કી મુરલી મેં બાબા ને વિશેષ ક્યા બાત બતાઈ, 2 બાતેં જો બતાઈ. એક મુખ્ય બાત શાંતિ સ્વધર્મ કી બતાઈ, તો દૂસરી બાત પવિત્રતા કી બાત બતાઈ. તો શાંતિ કે લીએ બાબા ને ક્યા કહા મુરલી કી પહેલી લાઈન મેં, મીઠે બચ્ચે 3 બાતેં ક્યા કરના હૈ બોલો. આપ બોલતે જાયેંગે તો આપકા ભી સાથ સાથ વો હોતા જાયેગા. એ શરીરી બન બાપ કો યાદ કરના હૈ ઓર ડેડ સાયલેન્સ. ડેડ સાયલેન્સ કા બાબા ને અર્થ બતાયા કે ડેડ બના જૈસે કોઈ મર જાતા હૈ, ઓર સાયલેન્સ મના શાંત. તો મેં ભી મર ગયા શાંત, તુમ ભી મર જાઓ શાંત હો જાઓ. તો કહેને કા મતલબ યે બાર બાર મેં અપને આપ કો અંદર અંદર બતાના કે મેં કોન હું ઓર મુજે ક્યા કરના હૈ, શાંત મેં રહેના હૈ, ઓર બાર બાર મેં યે મરને કા અભ્યાસ. એ શરીરી શરીર મેં હોતે હુએ કર્મ કરતે હુએ બીચ બીચ મેં એસા અભ્યાસ કરેંગે તો યે હમારા અભ્યાસ પક્કા હોતા જાયેગા. હર ચીજ હમારે નેચર મેં આ જાય, દિન ભર કે વ્યવહાર મેં કર્મ મેં વો ચીજ આ જાય, તો એસા અભ્યાસ અંદરૂની હમ કરતે જાય. ફિર ક્યા થા આજ કા પ્રશ્ન? પ્રશ્ન મેં બાબા ને ક્યા બતાયા? કિસકા ફાઉન્ડેશન? પવિત્રતા કા ફાઉન્ડેશન મજબૂત. તો ઉસકે લીએ બાબા ને મુરલી મેં ઉદાહરણ ભી, હર બાત કા બાબા મુરલી મેં ઉદાહરણ દેકર હમ બચ્ચો કો સમજાતે હૈ, તાકી કોઈ ભી બાત હમ ભૂલે નહીં. તો બાબા ને ક્યા ઉદાહરણ દિયા મુરલી મેં? કોઈ નહીં બોલ રહે. જૈસે મકાન બનાતે હૈ તો ઉસકા ફાઉન્ડેશન કિતના અચ્છી તરહ સે ભર કરકે વો કરતે હૈ, કૂટતે હૈ ફાઉન્ડેશન કો. ઓર કોઈ ભી ભૂકંપ મેં, અર્થક્વેક મેં મકાન કમજોર ન હો, મકાન ગિર ન જાય, ઉસકે લીએ ફાઉન્ડેશન કો અચ્છા બનાયા જાતા હૈ. તો ઉસી પ્રકાર સે હમ ક્યા કરતે હૈ? પવિત્રતા કા ફાઉન્ડેશન. હમ કોન સી બિલ્ડિંગ તૈયાર કર રહે હૈ? બાબા ને કહા સતયુગી દેવી રાજધાની સ્થાપન કર રહે હૈ, સતયુગ કી રાજાઈ સ્વરાજ્ય અધિકારી હમ બન રહે હૈ. તો દિવ્ય ગુણો કી ધારણા હમારે અંદર હો, ઉસકે લીએ પવિત્રતા ચાહીએ. પવિત્રતા કે લીએ ફિર બાબા ને ક્યા કહા? એક ઉદાહરણ ઓર દિયા, बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए, तो सोने के बर्तन में, कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, तो बुद्धि में ज्ञान कब रुकेगा, जब याद से बुद्धि पवित्र होती जाएगी, तो फिर ज्ञान बुद्धि में टिकेगा। अच्छा और आगे चलो, फिर क्या विशेष पॉइंट, 84 जन्मों की सीढ़ी का बाबा ने आज बताया, 84 जन्मों के बारे में हमको बताया कि किस किस प्रकार से हमने 84 जन्म लिए हैं, कैसे हम चढ़ती कला में थे और कैसे आते आते सतयुग में किस प्रकार के थे हम 16 कला संपूर्ण। बाबा ने किस प्रकार की, देखो दोनों की, शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा, दोनों की महिमा की अलग अलग डेफिनेशन बताए कि बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर, सभी चीजों का सागर है बाबा, और हम बच्चे देवता जो बनने वाले हैं वो देवताओं की परिभाषा फिर बाबा ने बताई कि देवताओं के गुण किस प्रकार के हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, तो ये सारी देवताओं की महिमा। तो ऐसा हम बन रहे हैं तो किस प्रकार से दिन भर में हमारा अटेंशन चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मुरली कैसे सुननी चाहिए, उसका भी कोई तरीका होना चाहिए, मुरली की बातें हमें याद कैसे रहे, उसके भी लिए हमें क्या चाहिए। देखिए कई बारी बाबा क्या करते हैं, मुरली में प्राय आप देखेंगे किसी न किसी का उदाहरण आएगा, कई बातों के लिए बाबा किसी का कभी नाम लेते हैं, कभी मुरली चलती है तो बागवान है, माली है, फूल है, कलियां है, कांटे हैं, इन सब के ऊपर मुरली चलती है, तो कभी मुरली चलती है तो ज्ञान सागर है, नदियां है, तालाब है, टुबके हैं, इनके लिए बाबा बताते हैं, तो कभी सूर्य चांद सितारे, तो बातें कितनी इजी होती है, सरल सरल बातें होती है, और कभी कोई झाड़ों का उदाहरण देंगे, तुम कौन सा सेपलिंग लगा रहे हो, कभी बच्चों को याद करते हैं, जगदीश बच्चा, कुमार का दादी, है ना, एक एक को किसी को भी याद करते हैं, कभी स्थानों को याद करते हैं, कहाँ पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी है, गीता पाठशाला है, सेंटर्स को याद किया, तो इन चीजों को भी अगर हम याद रखते हैं ना, कभी बाबा चूहे को याद करेगा, कभी सर्प को, कभी भ्रमरी को, तो अलग अलग प्रकार से याद दिलाते हैं कि तुम भी भ्रमरी के समान ब्राह्मणिया हो, भू भू करती हो, ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाती हो, तो कितनी सरल सरल बातें, अगर हम इस प्रकार की बातें भी अपने माइंड में छाप लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि बाबा ने आज किस किस को याद किया, आज के उदाहरण कौन से दिए, तो मुरली के द्वारा ही सभी प्रकार की इन्वेंशन जो भी निकली है वो मुरली के द्वारा, चाहे ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, जितनी भी विंग्स की सेवाएं हो रही है, 20 विंग्स बनी हुई है, सारे कहां से पॉइंट्स आती है, मुरली के द्वारा, तो मुरली से सारे आविष्कार इस प्रकार की है ये मुरली, है ना, तो हमारी जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली, हीरे तुल्य बनाने वाली ऐसी मुरली। दादियों को मुरली का कितना महत्व था कि मुरली सुने बिना भोजन भी करना नहीं है, क्योंकि आत्मा की पहली खुराक तो ये है, मुरली है, फिर किसी से मुरली का लेन देन करें, इतनी पॉइंट्स हमने सुनी, और अचानक में किसी को अगर एक दो पॉइंट भी पूछते हैं तो वो कभी कभी खिसक जाती है, तो क्यों खिसक जाती है, क्योंकि मन का काम चलना तो है ही किसी न किसी प्रकार के चिंतन में, या तो व्यर्थ में चलेगा या समर्थ में चलेगा, तो मन कहीं ना कहीं चलता रहता है, लेकिन उसको इस तरफ मोड़ने के लिए हमें उसको बार बार में अटेंशन दिलाना पड़ेगा, सावधान करना पड़ेगा, कई बार बाबा कहते हैं ना सावधान होशियार, तो खबरदार, तो माया हमारे पीछे है, तो माया से बचने का ये साधन है मुरली। मुरली में स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, है ना, स्वयं के ऊपर राज करना, आंख कान मुख जो मुख्य इंद्रियां है उनको किस प्रकार से कंट्रोल में रखना है और कैसे उन पर राज करना है कि वो हमें तंग न करें। अब जैसे कि कल बाबा ने मुरली में बताया, ब्रह्मा भोजन की महिमा बताई, तो कितना अटेंशन देने की बात है, हर कर्म के लिए बाबा ने अटेंशन दिया हुआ है कि कौन से कर्म करते हुए कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। अगर घूमने फिरने भी जाते हैं तो भी क्या करना है, आपस में ज्ञान की लेन देन करनी है, न कि कोई व्यर्थ की लेन देन करनी है। तो इसी प्रकार से अपने मन में समर्थ का चिंतन चले। मुरली में अनेक प्रकार के स्वमान होते हैं, उन स्वमान को भी हम नोट कर सकते हैं कि आज बाबा ने कौन सा स्वमान दिया। तो इस प्रकार की बातों को नोट करना और रिविजन करना और एक दूसरे से लेन देन करना। अगर लेन देन भी नहीं करते हैं, बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि ऐसा बनना है और फिर बनाना है, बाप समान बनना है और दूसरों को भी बनाना है, ज्ञान सुनना है दूसरों को भी सुनाना है। तो हर लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना है। लौकिक बातें भी हम कई करते हैं, धंधे धोरी संबंध कर्म सब प्रकार की चीजों में आते हैं, लेकिन वहां पर अलौकिकता में मोड़ देना है कि धंधा बिजनेस करते हुए भी उनके लिए भी बाबा क्या डायरेक्शन देते हैं कि किस प्रकार से चित्र रख दो दुकान में भी, जो आए उनको ये भी सत्य का ज्ञान भी दो। तो इस प्रकार की बातें बाबा सारी मुरली में बताते हैं। तो मुरली है ब्राह्मणों के लिए जीवदान, ब्राह्मणों के लिए प्राण है। शरीर में से आत्मा निकल गई तो जैसे बाबा ने बताया तो क्या बचेगा, है ना। उसी प्रकार से ये जैसे कि ज्ञान बुद्धि से निकल गया तो अंदर फिर वही जीवन, फिर वही पुरानी वाली जीवन हो गई। तो नई जीवन का, ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है कि ये मुरली हमारे साथ में रहे। इस मुरली का गायन है कि जैसे गोपियां क्या करती थी, गोपियों का बताते हैं ना, जो गीता में और में भागवत में उदाहरण देते हैं कि वो सारा काम करते हुए भी घर का काम काज छोड़ करके और जब मुरली की तान बजने लगती थी तो सारे का सारा छोड़ करके आ जाती थी। तो कितनी इम्पोर्टेंट होगी मुरली, तभी तो वो सारा काम छोड़ के, आज कोई काम छोड़ करके कहीं भागता है क्या, ऐसे कोई भी चीज के लिए नहीं जाएगा इधर उधर। लेकिन वो मुरली किस प्रकार की थी, तो ये आत्मा की खुराक देने वाली मुरली, जो हमें भविष्य में देवी देवता बनाने वाली मुरली, ऐसी मुरली जो बाबा ने हम बच्चों को सुनाते हैं। फिर आगे और थोड़ा मुरली का रिविजन कीजिए, आगे चलकर बाबा ने क्या कहा, 84 जन्मों का याद दिलाया और फिर बाबा ने कहा जो फाउंडेशन 21 जन्म तक हमारा चलेगा, ऐसा फाउंडेशन हमारा अभी बाबा डाल रहे हैं जिसको कोई भी धरती का तूफान भी हिला ना सके। तो ऐसा फाउंडेशन और 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के बाद में भी बाबा कई बार कहते कि 3/4 हम बच्चे सुख पाते हैं, दुख तो थोड़ा सा कलयुग के अंत में आकर के देखते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा कि जिनको निश्चय पक्का नहीं होगा तो क्या होगा, क्या स्वर्ग में चलने लायक वही होंगे जिनको निश्चय पक्का होगा, और निश्चय पक्का होगा तो वो पढ़ाई भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे। दादी जी गुलजार हमेशा क्लास कराती तो पूछती है कौन कौन है जो मुरली कभी भी मिस नहीं करते हैं, दादी जी अपना हाथ उठाती थी, बोले हमने कभी भी मुरली मिस नहीं की। मुरलीधर की मुरली, बाबा कहते मुरलीधर से प्यार है मना मुरली से प्यार है, तो मुरलीधर का ज्ञान ही तो मुरली है। तो मुरली से प्यार मना मुरलीधर से प्यार, तो भगवान से प्यार का ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी दादियां सभी, कई बार दादी जानकी जी मुरली के बाद में क्लास कराती थी तो अपना अनुभव सुनाती थी कि बाबा कई बार मुझे किसी बात के लिए प्रश्न पूछती तो बाबा बोलते कि बच्ची 5 बारी मुरली पढ़ो, बोले बाबा 5 बारी नहीं मैं 12 बारी मुरली पढ़ेगी। तो इतनी बार मुरली पढ़ना, और मुरली की बातें देखो खिसक भी जाती है जल्दी, 3 पेज का लव लेटर भगवान ने जो प्रेम पत्र इतना सुंदर सुनाया, साजन सजनियों को सुना रहा है, कभी पार्वतियों को सुना रहा है, तो ऐसी बातें और 3 पेज की बातें 3 पॉइंट में कभी कभी सिमट जाती है कि उससे ज्यादा कुछ निकल नहीं पाता है। तो कारण क्या कि बुद्धि उसमें चल नहीं रही है, तो उस पे थोड़ा सा जोर दे करके चलानी पड़ेगी। और हमारे फायदे की बात है ना, और एक दिन का फायदा नहीं 21 जन्मों के लिए फायदे की बात है, तो इतना अटेंशन दे करके हम वो ले। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ मत कौन सी है, किसी को ध्यान में है, श्री श्री भगवान की मत, श्री श्री कौन, शिव बाबा, उनकी मत ही श्रेष्ठ मत है। और सतयुग में किस चीज की बादशाह को जरूरत नहीं होगी, वजीर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतना बुद्धिमान हम यहाँ पर बन जाते हैं कि सतयुग में किसी को भी वजीर की जरूरत नहीं होगी। और बाबा ने बताया कि आगे चल करके पता पड़ जाएगा, कौन सा पता पड़ जाएगा, 8 रत्नों का, 108 रत्नों का बाबा ने बोला आगे चलकर पता लग जाएगा। और बाबा ने आज सूक्ष्म वतन की भी बातें बताई कि किस प्रकार से ध्यान में जाते हैं, देखते हैं कि सभी प्रकार के सोने के महल, वो स्वयंवर किस प्रकार से हो रहा है, तो सोने की ईंटें देखा और मन में आया कि ले जाऊं उठा करके, लेकिन नीचे आए तो कुछ भी नहीं, तो वहां के बाग बगीचे, अब बाबा बोलते बाग बगीचे तो स्वर्ग में होंगे, सूक्ष्म मतन में तो बाग बगीचे है नहीं, लेकिन ये सपने का संसार है एक प्रकार से, बाबा किस प्रकार से बहलाते हैं। और बाबा कहते कि अंत में भी बच्चों को ऐसे ही बाबा ध्यान दीदार कराएंगे, साक्षात्कार में ले जाएंगे और बहलाएंगे, जो आदि सो अंत, शुरू में जो हुआ अंत में भी होगा। तो वैकुंठ के फल फूल सब्जियां, बाबा ने कहा कि कितना सारी चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। और निरंतर याद करने की बात बाबा ने बोली कि देवताओं की जय बोलते हैं, अब जय बोलना माना क्या, बाबा की याद में रहना। इसके लिए बाबा ने कहा निरंतर याद करो, और ऐसी याद करो जो क्या हो, अंतकाल में कोई की स्मृति न आए, माना कोई देहधारी की स्मृति न आए। इसलिए बाबा कहते गंगा का तट और अमृत की धारा मुख में, ज्ञान की बूंद मुख में, गंगा जल मुख में, तो ऐसा गंगा जल, ये ज्ञान की बातें चलती रहे अंदर अंदर में और अंतमति सो गति हो जाएगी। तो बाबा ने कौन सा अक्षर के लिए कहा कि शिव के साथ में कौन सा अक्षर जमता है, शालिग्राम, शिव रुद्र के साथ में शालिग्राम शोभता नहीं है। देखो अक्षर भी शोभने वाला, तो किस प्रकार से अक्षरों का भी चयन होना चाहिए। कई बार भाषण करते और करते एक शब्द भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो उसका महत्व सारा वो हो जाता है। तो उसी प्रकार से बाबा एक एक शब्दों में, एक एक लाइन में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो बाबा ने फिर क्या स्वर्ग का उदाहरण दिया बाबा ने कि स्वर्ग में क्या होगा, आजकल के परिवार का उदाहरण दिया कि परिवार अभी भी होते हैं, कई परिवारों में बहुत ही शांति है, आपस में एकमत भी है, सभी प्रकार है, लेकिन उसको क्या नहीं कहेंगे, स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। तो स्वर्ग की बात तो अलग ही होगी, स्वर्ग में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, कुछ और नहीं होगा, दुख नहीं होगा, तकलीफ किसी प्रकार की नहीं होगी, प्रकृति से तो प्रदान है। तो सारी चीजें जो स्वर्ग में है उसकी तुलना तो अभी किसी से भी नहीं कर सकते, चाहे करोड़पति का परिवार हो, अरबपति हो, या बहुत बड़े सेठ साहूकार घर में सब प्रकार से संपन्न हो, कहना मानते भी हो एक दूसरे के, लेकिन स्वर्ग की तुलना किसी से नहीं करेंगे। बाबा कई बार कहते एग्जाम्पल कि अमेरिका है जैसे बहुत धनाढ्य है, लेकिन स्वर्ग के सामने क्या है, कोड़ी तुल्य है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए स्वराज्य के लिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत। और बाबा ने फिर लास्ट में क्या बताया है, शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, तो दिन भर में एक दूसरे से बात करते हुए भी धीरे बात करनी है, क्योंकि भट्टी में आए हैं तो भट्टी में अच्छी बातों का जितना यहाँ अभ्यास करके जाएंगे वो बातें आपके जीवन में आगे भी काम में आएगी। कोई भी बात जैसे कल दीदी ने बताया कि बाबा के कमरे में लिख करके कोई भी कमजोरी है तो यहीं पर छोड़ करके जाना, तो ऐसा देह अभिमान को छोड़ना और देही अभिमानी बनना, बार बार अपना ध्यान ब्रकुटी के बीच में लाना कि ये चमकता हुआ स्टार, ये लाइट में हूँ, ये अशरीरी आत्मा में हूँ। फिर बाबा ने वरदान में अपने दोनों स्वरूपों की याद दिलाई, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, अनादि में हम क्या थे और आदि में क्या। इसके लिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी दिया कि कैसे शरीर में आना है, अवतरित हुई आत्मा अपने को समझे और इस शरीर के द्वारा आकर के हम कर्म कराएं। जैसे ब्रह्मा तन में बाबा ने कहा निर्बंधन बनने वाले, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने वाले मर जीवा भव, दूसरा जन्म हो गया ना, शूद्रपने से मर गए और मर जीवा, हम ब्राह्मण जन्म में है तो ब्राह्मणों की स्मृति किस प्रकार की हो? तो जैसे बाबा ब्रह्मा तन को लोन लेता और बंधन में नहीं आता है ना? ब्रह्मा तन का आधार लेकर के शिव बाबा उनके द्वारा कर्म कराते, हम भी इसी प्रकार से इस तन में अवतरित हुई आत्मा समझकर इसके द्वारा कर्म कराएं और बंधन से मुक्त रहें। ऐसे जब चाहो बाबा ने कहा अपने को मोल्ड करो, फिर मूल वतन की स्थिति में हो नीचे आकर अवतरित होकर कर्म करो। और बाबा ने बताया स्लोगन में, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, यही मनसा सेवा है। तो मनसा की सेवा भी बाबा ने बता दी, सब प्रकार की मुरली में सेवाएं और सब चीजें मुरली में आ जाती है। अब मेरे नजर में मुरली क्या है, मैंने एक कविता लिखी है, आपको वो भी सुना देता हूं, क्योंकि मैं कविताएं बहुत सारी लिखता रहता हूं। तो शॉर्ट में एक चीज सुना के और यहीं पर हम, तो इसका हेडिंग है मीठी मुरली। अब मुरली क्या क्या है देखिए, किस प्रकार से एक एक लाइन में मुरली की विशेषताएं आप सुनेंगे कि मुरली किस किस नजर में क्या क्या है। बाप का बच्चों की खातिर प्यार है मीठी मुरली, आत्मा का आभूषण और श्रृंगार है मीठी मुरली, सब शास्त्रों की माँ बाप और सार है मीठी मुरली, पांडवों की दुनिया और घर बार है मीठी मुरली, शक्तिशाली शस्त्र और तलवार है मीठी मुरली, हीरे मोती ज्ञान रतन व्यापार है मीठी मुरली, अव्यभिचारी भक्तों के विचार है मीठी मुरली, मुरझाए पौधों पर अमृत धार है मीठी मुरली, डूब रहे मझधार को पतवार है मीठी मुरली, मन पसंद संगीत और झनकार है मीठी मुरली, आत्माओं का ताकतवर आहार है मीठी मुरली, माँ की मीठी लोरी और पुचकार है मीठी मुरली, सृष्टि चक्र का बहुत बड़ा विस्तार है मीठी मुरली, साजन का सजनी के खातिर तार है मीठी मुरली, लव लेटर और संगम का अखबार है मीठी मुरली, खुदा दोस्त की दोस्त प्रति मनुहार है मीठी मुरली, मीठी टोली मक्खन और फलाहार है मीठी मुरली, संगम युग का बहुत बड़ा पुरस्कार है मीठी मुरली, भगवान के वरदानों का यादगार है मीठी मुरली, मन के रोगियों का बड़ा उपचार है मीठी मुरली, खुशी बढ़ाने रोज रोज त्योहार है मीठी मुरली, सतगुरु के वरदानों का उपहार है मीठी मुरली, ब्राह्मणों के जीवन का आधार है मीठी मुरली, गोप गोपियों के गले का हार है मीठी मुरली, पुराने भक्तों पर ये उपकार है मीठी मुरली, माया रक्षक चीन की दीवार है मीठी मुरली, ये इसेंस और इत्र खुशबूदार है मीठी मुरली, स्वर्ग स्थापन करने आविष्कार है मीठी मुरली, सजनी का साजन जैसे संसार है मीठी मुरली, ये तोहफा है कुबेर का भंडार है मीठी मुरली, अंधों को आंखें लंगड़ों की यार है मीठी मुरली, बेलनियों कुब्जाओं का अधिकार है मीठी मुरली, लाख लाख के रत्न कोषागार है मीठी मुरली, अष्टरतन का दिन भर कारोबार है मीठी मुरली, खाद निकाले आत्मा की सुनार है मीठी मुरली, माया जीत बनने का हथियार है मीठी मुरली, भटक रहे की मंजिल पालन हाल है मीठी मुरली, पांच भूत असुरों खातिर ललकार है मीठी मुरली, मददगार ये गरीब की सरकार है मीठी मुरली, सच्चे गीता ज्ञान का प्रचार है मीठी मुरली, मीठी है ये मीठी है मीठी मीठी मुरली। ओम शांति।